You are listening to Sab Moh Maya Nahi Hai by Meena Mahajan.
रेड एफ एम पॉडकास्ट पर आपका एक बार फिर से स्वागत है. मैं हूँ आरजे यामिनी शर्मा, लेकर आई हूँ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ सब मोह माया नहीं है. हर थर्सडे लेकर आती हूँ ये एपिसोड आपके लिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हर किसी के पास वो चॉइस है, वो चुनाव है कि वो बेहतर ज़िंदगी जिए, और बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए ज़िंदगी को गहराई में जाकर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और अगर आप तैयार हैं ज़िंदगी को गहराई में जाकर समझने के लिए, तो सब मोह माया नहीं है का एक एक एपिसोड आपकी मदद करेगा. ज़िंदगी के एक बहुत ही गूढ़ एस्पेक्ट को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजी. हर एक एक प्लैनेट की परत हमारे साथ खोल रही हैं द वन एंड ओनली डॉक्टर मीना महाजन. वेलकम मीना जी. नमस्ते.
नमस्ते नमस्ते नमस्ते. गुड मॉर्निंग एंड आई एम सो हैप्पी टू बी बैक एंड थैंक यू वेरी मच यामिनी फॉर मेकिंग ऑल ऑफ दिस पॉसिबल.
It's my pleasure and it's our shared vision. I'm really kicked about आज नंबर चार के प्लानट की बात होने वाली है. आज थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करते हैं. बिफोर वी इंट्रोड्यूस द प्लानट, हम उस प्लानट का असर हमारी जिंदगी पर किया है वहां से शुरू करते हैं.
ओके okay. अब अगर मैं इस प्लानट की बात करूँ जो नंबर चार से रिलेटेड प्लानट है, यानी जिन लोगों का जन्म 4th को हुआ, 22 को हुआ, 31 को हुआ, 13 को हुआ, तो वो कहीं ना कहीं इस प्लैनेट की एनर्जी से जुड़े होते हैं. यानी दे हैव समथिंग मोर टू डू विद दिस प्लैनेट. ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनके साथ, इनफैक्ट हम सब इस प्लैनेट से बहुत जबरदस्त तरीके से जुड़े हुए हैं. इस प्लैनेट को कलयुग का राजा कहा जाता है. यानी कि ये कौन सा प्लैनेट है जिसको कि कलयुग में राजा की राजा का दर्जा दिया जा रहा है, एंड क्यों दिया जा रहा है? वेल, this planet is called Rahu. And this planet is a highly material energy. Rahu ke bare mein main pehle aapko ek chota sa mythological tale, katha suna deti hu, so that you are able to relate to it ki basically hai kya aur hamare andar iske kaun se gun aa jate hain Rahu ke. You ready Yamini?
राहु
सबसे पहले तो यू नो विथ योर लवली विजुअलाइजेशन प्लीज विजुअलाइज एन एनर्जी इन ग्रे एंड ब्लैक एंड लेट मी टेल यू दैट यू नो वी कंसिडर राहु एंड केतु टू बी टू nodes of the moon. So, यानी कि राहु और केतु को planets का दर्जा नहीं मिला है. इनको छाया ग्रह बोला जाता है. That is why पुराने episode में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि अगर गुरु के साथ राहु बैठ जाते हैं या सूर्य के साथ राहु बैठ जाते हैं तो वो उनकी उनकी छाया बना देते हैं. सो उनको combust करते हैं planets को, उनकी good qualities ले लेते हैं. So similarly, the north node is called the Rahu. Now let's understand it through the story. Now it so happened कि जब अमृत मंथन की बात आई, समुद्र मंथन की बात आई, तो ऐसा बोला गया, महादेव ने बोला कि देवों को और दानवों को बराबर बराबर बारी बारी से अमृत मिलेगा.
जी.
तो जब समुद्र मंथन शुरू हुआ तो देव एक तरफ खड़े थे और दानव एक तरफ खड़े थे. दानवों में राहु नाम का एक दानव था. एंड जब अमृत निकला तो पहले देवताओं को मिलना शुरू हुआ. तो उस समय जो ये दानव था राहु नाम का, इसको बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि इसकी जो बेसिक नेचर था राहु का वो था गुस्से वाला, एंग्जाइटी वाला, इम्पेशंस वाला, मैं वाला, एक डिल्यूजनल नेचर, यू नो, एक जल्दबाजी वाला नेचर था इसका. तो इससे जो है वेट नहीं हुई. तो इसने क्या किया, इसने अपना वेश बदला एंड ये देवताओं का वेश धारण करके और देवताओं की तरफ जाकर खड़ा हो गया. यानी राहु का बेसिक नेचर क्या दिखा हमें यहाँ पर, कि जो है वो दिखाता नहीं है, अपना भेष बदल लेता है, जल्दबाजी है, इम्पेशंस है, राइट, मटेरियल है बहुत ज्यादा, वेट नहीं कर सकता. तो ये बेसिक नेचर था इस डीमन का. तो जब ये देवताओं की तरफ जाता है तो जो हायर अथॉरिटीज वाले देवता होते हैं, सूर्य हैं, चंद्रमा है, वो इसको पहचान जाते हैं और इसका जो सर है ये पी ही रहा होता है अमृत, तो देवता जब इसको पहचानते हैं तो इसका सर काट देते हैं। तो सर इसका गिरता है बट सर तक वो अमृत जा चुका होता है, इसीलिए वो अमर हो जाता है। और जो धड़ गिरता है उसका, जहां तक अमृत नहीं गया होता, वो टॉर्सो अलग पड़ जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड केतु। सो इफ यू एवर विजिट अ नवग्रह टेम्पल, यू विल सी दैट राहु इज द हेड, इट्स द डीमोनिक हेड, इट डजंट हैव अ टॉर्सो। एंड इनवर्सली इफ यू सी द केतु, इट इज द टेल एंड इट डजंट हैव अ हेड। और उसके बाद एक कथा है कि यू नो वो जाते हैं सब महादेव के पास, तो महादेव बोलते हैं कि देखो तुमने गलती तो की है, तो तुम्हें मैं ग्रहों का दर्जा तो दूंगा नहीं, तुम भटकते रहोगे और छाया ग्रह बनके इस पूरे ब्रह्मांड में भटकोगे। तो एक तरह से उनको महादेव रिलीज भी कर देते हैं और श्राप भी दे देते हैं। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर आप कोई ऐसा इंसान देखते हैं कि जिसका सिर्फ सर है और उसका धड़ नहीं है, तो आप उसको देखकर क्या अंदाजा लगाएंगे कि जब किसी के पास सर होता है तो उसकी सबसे एक्टिव ऑर्गन कौन सी होती है? ब्रेन,
विजुअल सेंसेस, बिकॉज
यस, बिकॉज आंखें जो होती हैं हमारी वो सबसे स्ट्रॉन्ग कर्मा क्रिएट करती हैं। इसीलिए हम मेडिटेशन में हमेशा कोशिश करते हैं कि आंखें बंद हो 15-20 मिनट के लिए। सो यू फील इमेंसली रिलैक्स्ड व्हेन योर आईज आर क्लोज्ड। सो व्हाट हैपेंस इज इफ यू सी देन वो अमर हो जाता है राहु, और एक हाइपर एक्टिव ब्रेन है उसका, एंड इट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ इट्स नेचर, यू नो the allotted nature to this was jaldbazi and logon ko dhokha dena, apna vesh badal lena,
impatience
to ye sab kahin na kahin rahu ki qualities hain। acha ab agar kaliyug mein dekha jaye to aksar hum apne aas paas logon mein ye energy bahut high dekhte hain, so that is why isko kaliyug ka raja kaha jata hai। aur vedic astrology mein iske sath ek aur cheez judi hui hai, इसको सडननेस का प्लैनेट भी बोला जाता है। ये यू नो एक और चीज मैं बताना चाहूंगी यहाँ पर अपने लिसनर्स को कि मेरी जो 26-27 साल की जितनी भी रिसर्च है एस्ट्रोलॉजी में, कुछ क्लासिक टेक्स्ट हैं एस्ट्रोलॉजी के जो थंब रूल्स इंडिकेट करते हैं कि ऐसा है राहु अगर यहाँ है तो ऐसा है, यहाँ है तो ऐसा है। हाउएवर देर इज ऑल्सो एक्सपीरियंशियल स्टडी अबाउट दिस सब्जेक्ट which tells me that there is no thumb rule but there is always a case study that you know you keep doing। so jab kisi ko rahu ki dasha aati hai 18 saal ki hoti hai wo dasha, okay, it's a long dasha
18 saal tak rehti hai।
yes so when you are under the mahadasha of rahu you tend to get sudden results in your life and I have seen this happening so much with so many people, क्योंकि मेरे हाथों से हजारों पत्रियां निकल चुकी हैं। तो मैंने देखा है कि अक्सर लोग राहु की दशा में कुछ गलत decisions ले लेते हैं और वो बहुत बड़े decisions होते हैं, जैसे होता है ना कि आप बिल्कुल अर्श से फर्श पर आ गए, या कभी कभी राहु आपको बिल्कुल रंक से राजा बना देता है, लाइक Overnight आपको एक आइडिया आपका अप्रूव हो जाता है एंड यू बिकम अ वेरी रिच पर्सन, दैट सडननेस इज बिकॉज ऑफ राहु। देन ये थोड़ा नेतागिरी का भी प्लैनेट होता है बिकॉज राहु क्या है, छलिया है, एक छल करता है। कभी कभी जब आपने देखा है कि कोई नेता लोग झूठ बोलते हैं, ओवरटली जाकर प्रोमिस कर देते हैं लोगों को और आगे जाकर उसको पूरा नहीं करते, उसमें भी कहीं ना कहीं इस प्लैनेट का रोल आता है। So I'm just trying to identify the energy that you can understand that if you have these traits, it is to do with the planet Rahu. ऐसा नहीं है कि राहु खराब planet ही है, let me tell you. चार number के लोग बहुत intelligent होते हैं because राहु कहीं ना कहीं research का planet भी माना गया है। अगर आपके chart में planet Rahu is with a few positive planets and in its own nakshatras, like जो राहु के अपने नक्षत्र बनते हैं, राहु के अपने नक्षत्र जैसे आद्रा है, स्वाति नक्षत्र है, शतभिषा नक्षत्र है, अगर राहु अपने नक्षत्र में होता है तो ऐसे लोग बहुत बड़े FBI, CBI agents बनते हैं, researchers बनते हैं, पीएचडी कराने का प्लैनेट भी राहु है. सो योर राहु हैज टू बी वेल प्लेस्ड फॉर यू टू गेट इनटू द डेप्थ ऑफ एनी बिजनेस और अ डेप्थ ऑफ एनी सब्जेक्ट. सो इट्स नॉट दैट अ प्लैनेट इज बैड और गुड. वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट एवरी प्लैनेट has a good mandate and a bad mandate, and we have to learn to steer our energies towards the positives of that planet. That is the whole idea of doing a spiritual study or an astrological study on a person, that we have to educate people that look, if this planet is either going to give you greed, either you become a greedy person, okay, or else you can balance your Rahu and you can become a researcher, you can go deep into something. So it's about the gyan. So ultimately you use the guru planet to balance all the other planets in your life. So wow. Jitna aapke paas gyan hoga utna aap planets ki positive energy ki taraf apne aap ko steer kar payenge. Jaise kai baar log poochte hain ki jab main koi remedy deti hu rahu ki, so they often like to ask that रेमेडी क्या करती है. वेल राहु एंड एवरी अदर प्लैनेट, बट आज हम राहु की बात कर रहे हैं. हर प्लैनेट ना एक रिप्रेजेंट और एक सिंबल होता है किसी ना किसी चीज के लिए. जैसे राहु रिप्रेजेंट्स वेरी ओल्ड पीपल. राहु के डोमेन में कुछ ऐसी डिजीजेस आती हैं जो बड़ी अजीबोगरीब होती हैं, जैसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, कुछ परछाइयां दिखना, या और मे बी लेप्रसी, कोड, कुष्ठ रोग जो होता है ना, जो आपने देखा होगा लेप्रसी, जिसको बहुत ही ज्यादा एक ऐसी दृष्टि से देखा जाता है कि उनकी बिल्कुल अलग ही समाज में कॉलोनी बनी होती है और वो हमें सड़क पे भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं, लोगों को छुआछूत की बीमारी मानते हैं. अब आप थोड़ा सा सोचिए जरा, व्हेन आई टोल्ड यू दैट स्टोरी, इज इट रिलेटेबल दैट क्यों पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, इल्यूजन्स, डिल्यूजनरी स्टेट राहु क्रिएट करता है. अब आप ये बताइए कि जब तक आप इन चीजों पर विजय प्राप्त नहीं करेंगे, इस मानसिकता पर विजय प्राप्त नहीं करेंगे, तो आप सक्सेसफुल कैसे होंगे. यानी अगर हम छोटा सा आपको, अगर मैं एक रेमेडी देती हूँ कि सपोज किसी का राहु उसको बहुत नुकसान कर रहा है और मैं उसका कार्मिक पैटर्न एनालाइज करके बोलती हूँ कि आप जाइए और किसी कुष्ठ आश्रम में, एक लेप्रसी आश्रम में लेपर्स की सेवा कीजिए और उनको खाने पीने को दीजिए. सो व्हाट एम आई एक्चुअली डूइंग, आई एम एक्चुअली ब्रेकिंग अ कार्मिक पैटर्न. आई एम पुशिंग द पर्सन टू एक्सेप्ट समथिंग दैट ही हैज नॉट एक्सेप्टेड फॉर मे बी मल्टीपल लाइफ टाइम्स. सो दैट इज द कार्मिक करेक्शन दैट रेमेडीज डू.
और एक सामाजिक सेवा भी हो गई कि आपने सेवा भी कर ली, आपने एक कर्म भी किया जो मुश्किल है, जिसमें आपको कई सारे अपने भीतर के बैरियर्स तोड़ने पड़ेंगे. एंड दैट सेल्फ वर्क दैट यू टॉकिंग अबाउट, सो ब्यूटीफुल.
यस, इफ यू लुक एट पैरानॉर्मल एक्टिविटी, अब मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि राहु एक डिल्यूजनल एनर्जी,
राइट.
अब कभी कभी क्या होता है कि जब कोई कहता है कि उसको कुछ दिखाई दे रहा है, उसको कोई परछाइयां दिखाई देती हैं, रात को सोते हुए कोई तंग करता है, यू माइट वॉन्ट टू गो टू अ साइकेट्रिस्ट, एब्सोल्यूटली यू माइट वॉन्ट टू स्पीक टू अ साइकोलॉजिस्ट. बट इफ अ साधक लुक्स एट योर कुंडली, इफ अ साधक लुक्स एट योर मैप, बिकॉज योर कुंडली इज लाइक योर स्काई मैप, देयर विल डेफिनेटली बी समथिंग टू डू विद दिस प्लैनेट व्हिच इज गिविंग यू दीज डिल्यूजनरी आइडियाज.
वो प्लैनेट आपको परछाइयों से कुछ चीजें दिखा रहा है.
एब्सोल्युटली. और काला रंग, इसलिए मैंने कहा कि आप सोचना शुरू करो कि सूर्य है और उस पर एक काले रंग की परछाई आ जाती है, ग्रहण लग जाता है. सो सूर्य पे कौन ग्रहण लगाते हैं? राहु. चंद्रमा पे कौन ग्रहण लगाते हैं? राहु और केतु. काल सर्प योग अक्सर हमने सुना है
जी.
काल सर्प योग क्या होता है कि जब राहु और केतु की चपेट में मैक्सिमम प्लैनेट्स आ जाते हैं और वो नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, वो अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज खो देते हैं, तो काल सर्प योग बन जाता है. कल लास्ट एपिसोड में हमने बात की कि गुरु के साथ जब राहु होते हैं तो गुरु चांडाल दोष बना देते हैं. यानी हर
नाम भी कितने डरावने हैं ना, गुरु चांडाल योग, काल सर्प योग.
जी, लेकिन मैं यू नो उन सब लोगों को एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी कि एस्ट्रोलॉजी कतई भी आपको डराने का माध्यम नहीं है,
नहीं है।
जब आप किसी डॉक्टर के पास जाके बैठते हैं, आप अपना सीटी स्कैन, एमआरआई, ब्लड रिपोर्ट्स एनालाइज करते हैं, ये बिल्कुल वही है
बिल्कुल।
यू जस्ट सिट एंड यू एनालाइज योर बर्थ चार्ट विद समवन हु इज वेरी नॉलेजेबल एंड वेरी लर्नड and you understand what to do ahead, because I feel and I strongly want to tell people that your astrological chart and the placements of planet in that chart is actually coming to you from your past lives. You have not done anything in this life to put those planets in those positions. You got it the moment you are born. Let's understand. So wo kahan se aaya hai, hum sirf is janam mein gyan lekar इन प्लैनेट्स की एनर्जीज को मूव करना शुरू करते हैं। एक बहुत अच्छे उदाहरण से आपको आज ये बात समझाती हूँ। अगर सूर्य आपके बिल्कुल सर के ऊपर है, ओके, और आपको उनकी जो एनर्जी है, उनकी जो हीट है, उनकी जो रेज है, वो आपकी चमड़ी को जला रही है, एंड यू नो यू फील दैट ओ माय गॉड दिस इज लाइक नून टाइम, ही इज टू ब्राइट, एंड यू नो दैट सूर्य इज द एनर्जी गिवर, यू नो दैट ही कैनॉट, यू कैनॉट सर्वाइव विदाउट हिम, राइट? नाउ यू कांट मूव द सन, सन का एक अपना धर्म है, सूर्य का अपना धर्म है जो वो निभा रहे हैं। आप उस समय क्या करेंगे? आप खुद का एंगल चेंज करेंगे। आप एक ऐसी जगह पे चले जाएंगे जहां से सूर्य की रोशनी आपको 90 डिग्रीज पर ना पड़े,
आप छाया में चले जाएंगे,
आप छाया में चले जाएंगे। ऐसे ही जब हम रेमिडियल एस्पेक्ट पर आते हैं, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि रेमिडीज से क्या होगा, या यू नो ये सब है क्या। बेसिकली सिंपल साइंटिफिक लॉजिक से आप बात समझिए, आप प्लैनेट्स को मूव नहीं करेंगे, आप खुद में वो चेंजेस लाएंगे, खुद का एंगल्स बदलेंगे, खुद की जीवन शैली बदलेंगे, खुद की पोजीशंस चेंज करेंगे, जिससे आपको एक पर्टिकुलर प्लैनेट के मैलेफिक इफेक्ट्स या नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं आएंगे। इट इज सो सिंपल,
एज सिंपल एज दैट।
Yes, as simple as that.
मीना जी, जितना अभी तक राहु के बारे में मैं समझ पा रही हूँ आपकी बातों से, मुझे ऐसे लग रहा है कि राहु की एक ऐसे डेंजरस सी वाइब भी बन रही है। तो क्या हम प्लैनेट्स को पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसा लेबल कर सकते हैं?
हर प्लैनेट का ना एक पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड होता है यामिनी, एंड लेट्स आल्सो अंडरस्टैंड दैट आउट ऑफ द 9 प्लैनेट्स इन आवर चार्ट, इट्स नॉट पॉसिबल दैट मोर देन 4 to 5 प्लैनेट्स आर बेनिफिशियली प्लेस्ड फॉर अस। सो अब श्री राम की कुंडली में भी अगर 7 ग्रह बहुत अच्छे थे तो 2 ग्रहों ने उनको तकलीफ दी है जीवन में। कृष्ण के साथ भी ऐसे ही हुआ कि उनके पैदा होने से पहले ही उनको मारने का षड्यंत्र रचा था। आप सोचिए तो वो तो स्वयं विष्णु के अवतार थे।
कौन से ग्रह की कारस्थान थी?
शनि और राहु का बहुत बड़ा रोल होता है, कारागार से रिलेटेड, जेल से रिलेटेड, ये हम बाद में बात करेंगे जब शनि पर आएंगे। लेकिन राहु का स्पेशली, एंड आई नो दैट जब हम राहु की बात करते हैं तो एक बहुत डार्क एनर्जी क्रिएट होनी शुरू हो जाती है, लेकिन डार्क एनर्जी भी तो हमारा ही पार्ट है ना। जहां पॉजिटिव है वहां नेगेटिव भी है, लॉ ऑफ पोलैरिटी। जहां पर एक इविल फोर्स है वहां एक अच्छी फोर्स भी है। सो हम ये क्यों नहीं मान सकते कि ये सारी प्लैनेट्स की एनर्जीज स्वयं हमारे अंदर ही है। कभी कभी हमें जब एक्सेसिव गुस्सा आता है, कभी कभी हम जब बहुत अजीब बातें करते हैं, या जब हम बीमार हो जाते हैं, तो कोई ना कोई ग्रह तो रिस्पॉन्सिबल होगा ना उसके लिए। मैंने अपने जीवन में रिसर्च में ऐसा देखा है कि जिन लोगों में मिलिनेयर्स और बिलिनेयर्स बनने की क्षमता होती है ना, उनके चार्ट्स में राहु का बहुत बड़ा रोल आता है, बहुत बड़ा रोल आता है। बिकॉज राहु आपको सडननेस में लेके जाता है, यानी सडनली आपका एक आइडिया काम कर गया, सडनली आपका एक वेंचर क्लिक कर गया, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग राहु देता है।
So जितने कलयुग के जो राजा है उन्हें सरप्राइज देने को बहुत
yes,
पसंद आता है।
एब्सोल्युटली। और जितने भी मैंने मिलिनेयर्स बिलिनेयर्स आप ये बोलिए, यू नो उनकी पत्री देखी है जिनके पास आपको वो दिखाई देगा जो आपने कभी सोचा था मटीरियलिस्टिकली. नाउ हियर आई एम नॉट सेइंग दैट मे बी ही इज गिविंग यू अ लॉट ऑफ मेंटल पीस.
नो,
राहु टेक्स अवे मेंटल पीस बट इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ मटीरियल कम्फर्ट्स. तो जिन लोगों के पास आपने ऐसी गाड़ियां देखी हैं जो कभी आप सोच भी नहीं सकते, यू नो दे हैव अ फ्लीट ऑफ द ब्रांड्स, दे विल हैव अ लैम्बोर्गिनी, दे विल दे विल हैव अ बेंटली, दे विल हैव अ रोल्स रॉयस, ये इसमें सब में राहु का कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट होता है. लेकिन जब राहु आपको कुछ दे देता है, उस समय अगर गुरु आपके साथ नहीं होता, उस समय आपको अगर ज्ञान नहीं आता, तो राहु आपसे कोई ऐसी गलती भी करा देता है जिसकी वजह से ये सब चला जाए. सो हेंस आई थिंक बाय नाउ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट एस्ट्रोलॉजी इज अबाउट बैलेंसिंग द 9 प्लैनेट्स. इट्स नॉट अबाउट टेकिंग द इफेक्ट ऑफ ओनली वन. It is about creating a balance because Rahu without Jupiter will be useless, completely useless.
और जैसे कि आपने बताया मीना जी कि astrology is a study of light. तो अगर light है तो उसकी shadow तो होगी ही.
बिल्कुल बिल्कुल यामिनी.
Accept कर लेंगे. We'll accept.
Please accept करिए. ये this whole universe, this whole cosmos is so amazing and. You know, we are constantly, without even knowing, we are interacting with all the planets, all the galaxies, all the nakshatras, all the constellations. And it's such a beautiful place to be in because it just makes you more aware of everything around you.
I agree, Meena ji. And that awareness mein asli khoobsurti hai. Hamare sunne walon ko bata dein ki agle Thursday, agle Guruvar, aapko ek aur planet ki bhraman par lekar jayenge. एक कॉस्मिक लैंग्वेज है जो एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई है. मीना महाजन हमारे साथ होंगी अगले हफ्ते भी एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट प्लैनेट नंबर 5. वो क्या है जानेंगे आप. सो यू गॉट टू स्टिक अराउंड टू रेड एफएम पॉडकास्ट. सब मोह माया नहीं है.
यू वर लिसनिंग टू सब मुहमाया नहीं है बाय मीना महाजन.